नमस्कार भारत, तारीख 30 मई दिन सोमवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। दिल्ली में अफ्रीकी लोगों पर हमले की घटनाओं के सिलसिले में पुलिस ने की 4 गिरफ्तारियां। अफ्रीकी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं, होता है भारत में नस्लीय भेदभाव।
You go through street, you find people calling you monkey every time I go out until I...
भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के एजेंडे में नहीं है राम मंदिर मुद्दा। निर्मोही अखाड़े के महंत रामदास बोले,
बहुत बड़ी निराशा है कि इन्होंने हिंदू समाज को छला, अयोध्या के साधु संतों को छला और 30 साल से छला। राम को भुलाएंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, ये पक्की बात है। और हम लोग तो न्यायालय के भरोसे।
कार्यक्रम में खबरें होंगी, अखबारों की समीक्षा होगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों पर हुए हमलों को नस्लीय मानने से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक ये घटनाएं राजधानी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त पर हुई और ये मामूली झगड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस बीच पिछले सप्ताह गुरुवार को अफ्रीकी मूल के लोगों पर हुए हमले से जुड़े मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस को हमलावरों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए थे। वेनेजुएला में एक अज्ञात बंदूकधारी ने 11 लोगों की हत्या कर दी है। उसने सभी 11 लोगों को बंदूक की नोक पर घर से निकाला और फिर एक एक करके उनकी हत्या कर दी। मारे गए सभी 11 लोग पुरुष थे। मरने वालों में एक बुजुर्ग भी शामिल है। हत्या के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं हो पाया है। ईरान अपने नागरिकों को इस साल हज के लिए सऊदी अरब में मक्का नहीं भेजेगा। ईरान के संस्कृति मंत्री ने ये बात कही। ईरान ने कहा है कि सऊदी अरब जानबूझकर ऐसी दिक्कतें पेश कर रहा है जिससे ईरानी नागरिक हज की यात्रा न कर पाएं। पिछले साल हज के दौरान शैतान पर पत्थर फेंकने की रस्म के दौरान भगदड़ मच गई थी जिसमें सैकड़ों हज यात्रियों की मौत हो गई थी। इनमें ज़्यादातर ईरान के लोग थे। ईरान का आरोप है कि सऊदी अरब की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ, लेकिन सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने कहा कि ईरान के ये सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा,
ईरान इज द वन दैट हैज आइसोलेटेड इटसेल्फ बाय सपोर्टिंग टेररिज्म।
ईरान ने हमेशा आतंकवाद का समर्थन किया है, संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी, दूसरे देशों के मामलों में बेवजह दखलंदाजी की, विस्फोटक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा दिया, सीरिया और इराक में आतंकवादी भेजे और हमारे देश में जासूस भिजवाए। इसलिए बस अब बहुत हो चुका, ईरान की मनमानी नहीं चलेगी। ये थे सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मैक्सिको के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी एलन पुलिदो को देश की उत्तरी सीमा से अगवा कर लिया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 25 साल के एलन का अपहरण तब किया गया जब वो एक पार्टी से अपने घर लौट रहे थे। एलन अपनी एक महिला मित्र के साथ कार में थे, तब 6 नकाबपोश लोगों ने उनकी कार रुकवाकर उन्हें ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। हालांकि उनकी महिला मित्र को अपहरणकर्ताओं ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया है। अब तक उनके अपहरण की वजह साफ नहीं हो पाई है। सीरिया में मुख्य विपक्षी गुट के शांति वार्ताकार मोहम्मद अलाउस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सीरिया में शांति प्रक्रिया में कोई प्रगति नहीं हो रही है, इस वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। दिल्ली में गुरुवार को अफ्रीकी मूल के लोगों पर हमले की घटनाओं के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई तो शुरू की, लेकिन इससे भी मामला शांत होता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि इस प्रकरण पर पहले पुलिस ने इसे नस्लीय हमला मानने से इनकार किया और उसके बाद विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के उस बयान को मीडिया ने उछाल दिया जिसमें उन्होंने इसे मामूली घटना कहा था और मीडिया को तूल देने की बात कही थी। अफ्रीकी लोगों पर नस्लीय हमले के आरोपों के बीच भारत में अफ्रीकी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ओकितो कोंगो कहते हैं कि पूरे भारत में नस्लीय भेदभाव होते हैं।
You go through street, you find people calling you monkey every time I go out.
ओकितो कोंगो कह रहे थे, अगर आप सड़क पर चलते हैं तो आपको बंदर बुलाने वाले लोग मिल जाएंगे और अगर आप शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस भी आप पर हंसती है, वो आपको बंदर बुलाते हैं। भारत में अफ्रीकी छात्र संघ के अध्यक्ष होने के नाते मुझे हर रोज इस तरह की खबरें सुनने को मिलती थीं। भारत में अफ्रीकी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ओकितो कोंगो के शब्द। कल दिन भर इस मामले पर क्या कुछ घटा, किस तरह की बयानबाजी हुई और पुलिस क्या कहती है, सुनिए वात्सल्य राय से।
दिल्ली में गुरुवार को अफ्रीकी मूल के लोगों पर हुए हमले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बात की और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा था,
नई दिल्ली में अफ्रीकी देशों के लोगों पर हुए शारीरिक हमले के मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से बात की। ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं। कमिश्नर को हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और हर किसी की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
ये थे राजनाथ सिंह के शब्द। दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ ईश्वर सिंह ने बीबीसी को कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया,
चार लोग अरेस्ट हैं और एक अप्रीहेंड है, जेसीएल है। उसमें से किसी के खिलाफ प्रीवियसली कोई केस दर्ज नहीं है और इस तरह की कोई कंप्लेंट भी नहीं किसी भी तरह का। और वो यहीं पे एक दो मदानगढ़ी के हैं, एक दो राजपुर गांव है, दोनों गांव में अलग अलग फासला है, वहां के रहने वाले।
पुलिस के मुताबिक ये मामले नस्लीय हिंसा से जुड़े हुए नहीं है। पुलिस का कहना है कि अफ्रीकी लोगों पर हमले अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर हुए हैं और ये अलग अलग मामले हैं। जिन चार लोगों पर हमले के मामले सामने आए हैं उनमें से दो महिलाएं हैं। उधर विदेश मंत्री वीके सिंह ने इस मामले को लेकर मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा,
दिल्ली पुलिस के साथ विस्तार से चर्चा की और पाया कि राजपुर खुर्द में अफ्रीकी मूल के नागरिकों के साथ हुई छोटी घटना को मीडिया बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। मीडिया ऐसा क्यों कर रही है? देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें उनके इस मकसद पर सवाल उठाने चाहिए।
ये थे वीके सिंह के शब्द। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरुवार को नाइजीरिया के केनेथ से तेज संगीत बजाने को लेकर स्थानीय लोगों का झगड़ा हुआ था। वहीं नाइजीरिया के ही लॉकी से सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने को लेकर झड़प हुई थी। हालांकि लॉकी ने इन आरोपों को गलत बताया।
26 of May, on my way going to church, as I was in an auto, some group of Indians stopped the auto man.
मैं ऑटो में चर्च जा रहा था। इन लोगों ने ऑटो को रोका। उन्होंने कहा कि वो कुछ पूछना चाहते हैं। उन्होंने ऑटो वाले को पीटना शुरू कर दिया। अचानक मेरे पीछे से किसी ने मुझे जोर से चांटा मारा। जैसे ही मैं मुड़ा, मैंने देखा कि 10 से 15 इंडियन वहां खड़े हैं। उनके हाथ में क्रिकेट का बल्ला और ईंटें थीं। मैं वहां से भागा तो उन्होंने मुझ पर ईंटों से हमला किया और मुझे भागने के चक्कर में नाक पर चोट लग गई। बहुत खून बह रहा था और फिर मैंने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल किया। मैं शराब नहीं पीता और ना ही सिगरेट। मैं चर्च जा रहा था तो क्या शराब पीकर जाऊंगा?
ये थे लॉकी के शब्द। वहीं केनेथ के मित्र जैक्सन ने भी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा,
दिस इज अ रेशियल इशू बिकॉज़ दे आर टेलिंग देम टू गो बैक टू अफ्रीका, वी डोंट नीड यू हियर, गो बैक टू योर अफ्रीका।
ये नस्लवाद की घटना है, क्योंकि ये लोग हमें बोल रहे हैं कि अफ्रीका वापस जाओ, चले जाओ, क्योंकि यहाँ हमारी कोई जरूरत नहीं। पिछली बार ओलिवर की जान चली गई थी, अभी 4-5 दिन पहले की ही बात है। हम शोक मना ही रहे थे और अब ये घटना।
ये थे जैक्सन के शब्द। लॉकी और जैक्सन दोनों का ही कहना है कि वो खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर नाखुश हैं। ये दोनों खुद को पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट बताते हैं, लेकिन चाहते हैं कि अफ्रीकी देशों के लोगों को आगे भी सुरक्षा मिलती रहे।
वात्सल्य राय की रिपोर्ट हम सुन रहे थे, जिसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से भारत में जो अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं उन पर हाल में हमले की घटनाएं हुई हैं। आज से हम अपने कार्यक्रमों में, यानी कि सुबह के प्रसारण के कार्यक्रमों में, अपने संवाददाताओं को शामिल करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इसी पहली कड़ी में मेरे साथ ज़ुबैर अहमद मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, सवेरे जो ताज़ी खबर जिस पर हम इस समय चर्चा कर रहे हैं और इस पर हमने पहले भी आपसे चर्चा की है, ये अनावश्यक विवाद इतना कैसे बढ़ गया? एक के बाद एक बयान आ रहे हैं,
ये देखिए
जरूरत थी क्या इसकी?
हमले भी बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में। आप देखेंगे कि अफ्रीकियों के खिलाफ जो एक की हत्या की है, उसके बाद कुछ उसके बाद भी 2-3 हमले हुए हैं और इसमें बयानबाजी की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए थी। क्योंकि जब वीके सिंह साहब ने कहा कि मीडिया उछाल रही है इस चीज़ को, तो मेरे ख्याल से वीके सिंह साहब से ये पूछना चाहिए कि आप अपना काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, आप सुषमा स्वराज की बातों को मान रहे हैं कि नहीं। इस सब में आप देखिए सुषमा स्वराज की भूमिका सबसे अच्छी रही है।
नहीं, क्योंकि सुषमा स्वराज ने उनको असाइन किया था कि आप जाइए अफ्रीकी लोगों से, आप मिलिए, बात कीजिए। जी
जी, लेकिन उनकी बात अगर आप ठीक से गौर करें तो सुषमा स्वराज ने कहा है कि پولیس اسٹیشنز جہاں ان علاقوں میں جہاں پر افریقی رہتے ہیں ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. وی کے سنگھ صاحب اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. میرے خیال سے وہ سب سے زیادہ ضروری ایکشن لیجئے جنہوں نے کچھ غلط کیا ہے اس کے خلاف, اور ہو سکتا ہے کہ اس میں افریقیوں نے بھی کچھ غلطی کی ہوگی تو وہ تفتیش میں سامنے آئے گی بات.
لیکن میڈیا بھی تمام خبروں کو جو ہے بات کا پتنگڑ بنا دیتی ہے, اور جو دلی پولیس کے ادھیکاری انہوں نے پہلے ہی کہا کہ یہ تو مطلب یہ نسلی حملہ ہے ہی نہیں.
دیکھیے میڈیا کا تو کام ہے کہ چیزوں خبروں کو آپ شروتاؤں تک لانا اور جو پاٹھک ان تک لانا. میرے خیال سے اس کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا چاہیے. یہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی آ رہی ہیں. خود میں نے اس طرح کی کئی گھٹناؤں کو کور کیا ہے. میں ان سے ملتا رہا ہوں پچھلے کچھ سالوں میں. ممبئی میں بھی اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہی ہیں. تو ایک یہ آئسولیشن میں اگر آپ دیکھیں, اس کو الگ تھلگ کر کے دیکھیں, تو ہو سکتا ہے کہ ایسا لگے کہ اس پہ زیادہ چرچا ضرورت سے زیادہ ہو رہی ہے, لیکن پورے ایک پس منظر میں دیکھیں ہاں
مدعا ہے یہ. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب.
نمسکار بھارت, شارٹ ویو 31, 25 اور 19 میٹر بینڈ یعنی 9835, 9915, 11995 اور 15510 کلو ہرٹز, اور میڈیم ویو 1413 کلو ہرٹز پر.
آپ سن رہے ہیں بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت. رخ اتر پردیش کا کرتے ہیں. اتر پردیش کے ایودھیا میں دشکوں پرانے بابری مسجد رام جنم بھومی وواد ان دنوں پھر سے سرخیوں میں ہے, کیونکہ بھارتی جنتا پارٹی کے شیرش نیترتو نے بار بار دہرایا ہے کہ آگامی ودھان سبھا چناؤں میں رام مندر نرمان ایک مدعا نہیں ہے. حالانکہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں لمبت ہے, لیکن ایودھیا میں امت شاہ اور راجناتھ سنگھ کے اس طرح کے بیانوں پر خاصی ناراضگی دکھ رہی ہے. آپ کو یاد دلا دیں کہ 2010 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے 2-1 کے بہومت سے دیے گئے اپنے فیصلے میں ووادت زمین کو 3 حصوں میں بانٹتے ہوئے ایک حصہ سنی وقف بورڈ, ایک حصہ نرموہی اکھاڑا اور تیسرا رام للا کو دے دیا تھا. اس کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ آ گیا. بی بی سی سنواداتا نتن شریواستو نے معاملے میں ایک پکشکار نرموہی اکھاڑے کے پرمکھ مہنت پجاری رامداس سے بات کی.
اب جو رام مندر نرمان کا معاملہ ہے, سرکار بھارتی جنتا پارٹی کی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے لیے مدعا نہیں ہے چناؤ میں یا کسی اور چیز میں, لیکن معاملہ نیایادھین ہے کورٹ میں. لیکن جو عام رائے دکھ رہی ہے وہ یہ دکھ رہی ہے کہ معاملہ ٹھنڈا سا پڑتا جا رہا ہے, ایسا کیوں لگ رہا ہے؟
اس میں ایسا ہے کہ ان کی کرنی اور کتھنی میں انتر.
کس کی؟
بھاجپا کی. کیونکہ جب ان کا مدعا شروع سے تھا کہ رام للا ہم آئیں گے مندر وہیں بنائیں, چاہے کوئی بھی پردھان منتری بنا ہو چاہے اٹل جی بنے ہوں, لیکن یہ مدعا کہیں نہ کہیں آیا, اور 91 میں تو اتنے زور شور سے آیا کہ ان کی 4 پرانتوں میں سرکار بن گئی, اور وہ اس سے نہیں بنی ان کے کوئی کارن. ان کو چاہیے کہ بنوا دینا چاہیے, اب ان کے پاس پورن بہومت ہے, اور یہ جا کر کے ایک ادھیادیش لائیں اور قانون میں پریورتن کریں اور رام مندر کے لیے وشیش بل لائیں.
مودی نے شروع میں بہت پہلے برسوں پہلے یہ بات کہی تھی, رام مندر بننا ہے بننا ہے, اب وہ اس بارے میں باتیں نہیں کرتے, کہتے مدعا ہی نہیں ہے.
نہیں, رام مندر کے رتھ یاترا کے اڈوانی کے سنیوجک ہی تھے اس سمے, 1990 میں جو رام رتھ یاترا ہے اس کے ہی سنیوجک تھے, تو اس سمے کیوں بنے یہ؟ اگر ان کا دھیے نہیں تھا, ان کا ادیش نہیں تھا, اس کا مطلب کچھ اور تھا, ستا پانے کے لیے انہوں نے سبھی کیا, ایسا نہیں ہے. لیکن رام کو بھلائیں گے تو پھر دقت میں آ جائیں گے, یہ پکی بات ہے. اور ہم لوگ تو نیالے کے بھروسے, کیونکہ جتنے بھی پرنام آئے وہ نیالے دوارا ہے, چاہے 1986 میں تالا کھلنے کا آدیش ہو, کسی پارٹی نے نہیں کھلوایا, کسی دل نے نہیں کھلوایا, وہ آپ کا جنپت نیالے نے کھلوایا. 1989 میں کسی بھی مکھیہ منتری نے یا پردھان منتری نے شلانیاس نہیں کرایا, وہ ماننیہ اچ نیالے کے آدیش پر ہو. اور 30 ستمبر 2010 کو جو یہ فیصلہ آیا وہ بھی کسی راجنیتک پارٹی نے نہیں دلایا, وہ ہمارے ہائی کورٹ کے ماننیے ججوں نے دیا, اور یہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بھی سپریم کورٹ کے ہی جو ہے مکھیہ نیایادھیش کے جو سمویدھان پیٹھ بنے گی وہی اس کو فیصلہ دیں گے.
رام مندر ایسا مدعا ہے جس پہ آپ بھارتی جنتا پارٹی کا جو کاڈر ہے تیار ہوا ہے اور اس نے ان کو جتایا ہے ان کو,
ہاں,
تو اب ایک دم سے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ, اور خاص طور سے مودی اور امت شاہ جو خود بھی رام مندر کی بات کرتے رہے ہیں اور ہندوتوا کی بات کرتے رہے ہیں, آپ تو خود ایک اکھاڑے کے مطلب مہنت ہیں, اور خاص طور سے آپ اس پورے وواد میں ایک پارٹی بھی ہیں,
جی,
کتنی نراشا ہوتی ہوگی جب اس طرح کے بیان آپ پڑھتے ہوں گے یا اس طرح کے بھجن سنتے ہیں؟
بہت بڑی نراشا ہے کہ انہوں نے ہندو سماج کو چھلا, ایودھیا کے سادھو سنتوں کو چھلا, اور 30 سے چھلا.
پہلے تو بھاجپا اٹل بہاری وغیرہ آپ کے سمرتھن میں رہتے تھے.
اٹل جی کبھی سمرتھن میں نہیں رہے, اس مدعے پہ وہ بھی نہیں رہے,
लेकिन अगर मोदी और अमित शाह ने छला तो अभी छल रहे हैं, तो किस आखिर किस तरह से छल रहे हैं?
अब ये छल रहे हैं विकास के एक नारा देकर के।
तो क्या हिंदू समाज को छल रहे हैं या किसको?
हिंदू समाज को छल रहे हैं, हिंदुओं ने ही इनको जिताया। उत्तर प्रदेश में अगर हिंदूवादी सरकार माने आप सब मिलाकर, तो 72 सीट जो पाए हैं उसमें एक भी मुस्लिम नहीं जीता है किसी दल का। इस ये जितने जो वोट पड़े वो हिंदू समाज ने इनको दिया है, क्योंकि एक लहर चली हिंदुत्व की,
मतलब विकास मुद्दा नहीं था,
नहीं था उसमें, था कि मंदिर बनाएंगे, इनसे आशा थी लोगों को।
अब 2 साल हो गए हैं, 3 साल बचे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि मंदिर मुद्दा ही नहीं है। तो जो यहाँ का संत समाज है, महंत समाज है, उसमें कितनी निराशा या उम्मीद है आप मंदिर को लेकर?
नहीं, वो तो पूरी तरह से टूट चुका है इनके प्रति, अब इनके उसमें बहकावे में नहीं आएगा क्योंकि इनकी असलियत को जान गए।
निर्मोही अखाड़े के प्रमुख महंत पुजारी रामदास कहते हैं कि बीजेपी ने इन्हें मंदिर मुद्दे पर छला है और अब संत समाज इनके बहकावे में नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश के बाद रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां इंदौर के महाराजा यशवंत राव अस्पताल में 2 बच्चों को ऑक्सीजन की जगह कथित तौर पर बेहोश करने वाली नाइट्रस गैस दे दी गई। इसके बाद बताया जा रहा है कि बच्चों की मौत हो गई। वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
इंदौर में स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंत राव में एक लापरवाही के चलते 2 बच्चों की मौत हो गई है। यह ऑपरेशन थिएटर 5 दिन पहले ही शुरू किया गया था। ये बच्चे दिल की बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। इन्हें एनेस्थीसिया देते वक्त ऑक्सीजन की जगह नाइट्रस ऑक्साइड दे दिया गया। अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन थिएटर सील करने के साथ ही जांच समिति बनाकर इसे बनाने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर सुमित शुक्ला दावा कर रहे हैं कि मामले की जांच करवाई जाएगी ताकि सही बात पता चल सके।
मैं ऐसा हम लोगों को प्रतीत हुआ कि हो सकता है कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रस की जो ऊपर से लाइन आ रही है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो। जिस व्यक्ति ने ये सब कनेक्शंस किए हैं, पुलिस को एक FIR हम लोग लॉन्च कर रहे हैं और चाहते हैं, हम लोग ने उस OT को भी सील कर दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इसकी पुलिस अपने लेवल पे ढंग से जो है वो तहकीकात कर ले।
बताया जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर की छत से नीचे की ओर गैस की 2 पाइपलाइनें लाई गई हैं। दोनों पाइपलाइनों के रंग अलग अलग हैं। नीले रंग की पाइप से नाइट्रस और सफेद पाइप से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। पाइप का रंग देखकर ही मरीज को गैस दी जाती है, लेकिन सफेद पाइप में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रस गैस आई और बच्चों की जिंदगी मुश्किल में पड़ गई। अस्पताल प्रबंधन की ओर से की गई शिकायत पर ऑपरेशन थिएटर में पाइपलाइन बिछाने वाले ठेकेदार को रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ लापरवाही और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। शुरह नियाजी, BBC न्यूज, भोपाल।
तो 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया और कथित तौर पर इनकी जो गैस थी वो बदल गई थी, जिसमें कि ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन गैस आ गई थी। अखबारों का जिक्र करते हैं और आज मेरे साथ एक नहीं बल्कि 2 लोग मौजूद हैं। ज़ुबैर अहमद मौजूद हैं और प्रभात पांडे मौजूद हैं। सबसे बड़ी खबर आपकी नज़र में, सारे अखबार आपके सामने खुले हुए हैं ज़ुबैर साहब,
अखबार खोल के रखा हमने, और जो हिंदुस्तान टाइम्स अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, इसमें जो सबसे बड़ी उन्होंने सुर्खी लगाई है वो, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के शुरू में, अफ्रीकियों के जो खिलाफ हमले हुए हैं, तो इनकी हेडलाइन ये है, डोंट पार्टी एंड ड्रिंक इन पब्लिक कॉप्स टेल अफ्रीकन्स। यानी दिल्ली पुलिस ने अफ्रीकियों से एक तरह से गुजारिश की है कि आप ज़्यादा
शराब ना पिए और पार्टी ना करें,
पब्लिक में ना करें, ऐसे अपने घरों के अंदर करें। तो इस तरह की एक कह लें कि
मशविरा है,
मशवरा ही है, पर इस तरह क्योंकि कुछ जो नागरिक हैं वहाँ पर, उन्होंने शिकायत की है कि ये ज़ोर से पार्टी करते हैं, बहुत इन जो गाजे बाजे करते हैं, डांस वंस करते हैं, तो इनकी एक इनका एक कल्चर है। मैंने भी देखा है इनको मुंबई में, जिस तरह से ये पार्टियाँ करते हैं, तो लोकल जो लोग हैं वो थोड़े से बदहाल तो हो ही जाते हैं। और जैसे कि स्टेट्समैन अखबार ने भी लिखा है कि अफ्रीकन असॉल्ट केस 8 अरेस्टेड। अब ये तो 8 गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, हमें तो 5 की जानकारी थी और 4 को हिरासत में लिया गया। कभी कभी मीडिया में भी हिरासत को गिरफ्तारी में शुमार कर लेते हैं, लेकिन इससे ये ज़रूर पता लगता है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस चौकस हुई है और इन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे कि सुषमा स्वराज ने जब राजनाथ सिंह से गुजारिश की थी कि आप भाई देखें कि इस तरह के हमले ना हो, क्योंकि भारत और अफ्रीकी देशों के बीच रिश्ते बहुत ही गहरे हैं और
अच्छे भी हैं।
पिछले साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री ने 54 देशों से आए हुए अफ्रीकियों के साथ जो समिट है उसका उद्घाटन किया, तो उस वक्त भी यही बात कही।
तो आज की सबसे बड़ी खबर अखबारों के नज़रिए से, आपकी नज़र से, अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं। प्रभात, बाकी अखबार क्या कह रहे हैं, बाकी खबरें जरा संक्षेप में।
जी मोहन लाल जी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आईपीएल फाइनल में हैदराबाद की जीत के अलावा एक खबर प्रमुखता से छापी है कि खालिस्तान चरमपंथी कैंपों को लेकर भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार को एक प्रकार से सचेत किया है। भारत की खुफिया एजेंसियों ने कहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब में ये कैंप में जो लोग हैं वो पंजाब को निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान ने कहा है कि पाकिस्तान इतना अपने न्यूक्लियर पावर को लेकर इतना कैपेबल है कि दिल्ली को 5 मिनट में निशाना बना सकता है। इन दो खबरों ने मेरा ध्यान खींचा। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस में ही खबर छापी है कि इतालवी मरीन सल्वाटोर जो है वो जो इटली पहुंचे तो उनका जो स्वागत जिस तरह से किया जा रहा है, उनके घर वाले गले लगकर उनका स्वागत कर रहे हैं, ये तस्वीर प्रमुखता से छापी है।
एक खबर और लेना चाहूंगा, दैनिक जागरण लिख रहा है कि रद्द किए जाएंगे सभी करार और ये अगस्ता घोटाले जो वाली कंपनी है उसको काली सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये दैनिक जागरण अखबार के हवाले से। कार्यक्रम में अब हम आपको वुसतुल्लाह खां की डायरी सुनाते हैं और आज देखिए सुनिए कि उसमें क्या है।
हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और अपने बच्चों को भी यही बताएंगे कि झूठ बोलना अच्छा नहीं होता, सत्य में ही विजेता है। अगर ये वाकई कोई सच है तो सिर्फ हमारे आपके व्यक्तिगत स्तर पे ही क्यों है, राजपाट को इस बात पे इतना विश्वास क्यों नहीं? राज अपने लोगों से ये उम्मीद क्यों रखता है कि राष्ट्रीय हित में जो भी बोला जाए उसे सच और झूठ की बहस में पड़े बगैर एकदम कबूल कर लो, इसी में सबका भला है। मसलन यही कि परमाणु बम शांति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। अरे साहब डरिए नहीं, ये कोई तोप टैंक थोड़ी है, ये तो बस हिफाजती उपकरण है, ये कोई युद्ध पोत थोड़ा है, स्ट्रेटेजिक नेवल प्लेटफॉर्म है, बस एक दो तोपें वो पे लगा लेते हैं ताकि कोई परिंदा पास ना फटके। अरे इसे फाइटर जेट मत समझिए, ये तो एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म यानी हवाई मंच है जिस पे एक दो मिसाइल भी फिट हो जाते हैं और वो भी आक्रमण के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। हम किसी देश के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते, हम अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं, जियो और जीने दो। राज और कानून की नज़र में सब बराबर हैं, राज किसी से भेदभाव नहीं करता, हम सबका विकास चाहते हैं, ये एक ही राष्ट्र है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई तो इस राष्ट्रीय गुलदस्ते के फूल हैं जिनकी अपनी अपनी खुशबू है। हमारे यहाँ मानव अधिकारों का पूरा पूरा पालन किया जाता है, आप कानून के दायरे में रहेंगे तो राज भी आपको तंग नहीं करेगा। अब देखिए ना, इक्का दुक्का घटनाएं तो हर जगह घट ही जाती हैं, पांचों उंगलियां बराबर तो नहीं होती, मगर राज के लिए तो सभी बच्चों जैसे हैं। जितना नवाज शरीफ या नरेंद्र मोदी का इस देश और यहाँ की सुविधाओं पर हक है उतना ही उनके चपरासी का भी हक है। अब थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो हो ही जाती है, वो तो घर के अंदर भी हो जाती है। भारत भी चाहता है कि आपसी संबंधों को बढ़ावा मिले, पाकिस्तान भी यही चाहता है, ईरान में भी मानव अधिकारों को पूरा पूरा सम्मान दिया जाता है और चाइना में भी सिक्योरिटी फोर्सेस कभी किसी बेगुनाह को निशाना नहीं बनाती और अमेरिका भी पूरे विश्व में अमन, शांति, खुशहाली और कुशल मंगल चाहता है और फ्रांस भी हर देश को फलते फूलते देखना चाहता है। अगर तो ये वाकई सच है और ये सब सच बोल रहे हैं तो फिर झूठ कौन बोल रहा है? जाहिर है कि मैं।
वसतुल्लाह एक सवाल उठा रहे हैं कि झूठ कौन बोल रहा है, और इस डायरी को यदि आप पढ़ना चाहें तो bbchindi.com पर आएं, वहां पर ये आप पढ़ सकते हैं। कार्यक्रम में अब हम हफ्ते भर खेल जगत में क्या कुछ हुआ ये सुनेंगे।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद के खिताबी जीत के साथ ही कल आईपीएल 9 का समापन हो गया। बेंगलोर में खेले गए फाइनल मुकाबले में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 8 रनों से हराया। जीत के लिए 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय बेंगलोर ने क्रिस गेल के तूफानी 76 और कप्तान विराट कोहली के 54 रनों की मदद से 10.3 ओवर में पहले विकेट के लिए 114 रनों की साझेदारी भी कर दी, लेकिन इनके आउट होते ही पासा पलट गया। अंततः बेंगलोर की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 200 रन बना सकी। बेन कटिंग ने 35 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने कप्तान डेविड वार्नर के 69, बेन कटिंग के नाबाद 39 और युवराज सिंह के 38 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 208 रन बनाए। मैच समाप्त होने के बाद बीबीसी से खास बातचीत में भारत के पूर्व ऑलराउंडर मदन लाल ने बेंगलोर की हार के कारण बताते हुए कहा,
114 रन बनाना और उसके बाद मैच हारना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जाकर उनकी जो रणनीति है वहाँ पे फेल हुई, क्योंकि ठीक है क्रिस गेल जो है वो उसकी नेचुरल गेम है हिटिंग करना, बट विराट कोहली या डिविलियर में से एक खिलाड़ी जो है, मैं समझता हूँ कि वहाँ रहना 20 ओवर तक रहना बड़ा जरूरी था, क्योंकि रन इतने ज्यादा बाकी बचे नहीं थे और अगर इन दोनों में से कोई भी एक खिलाड़ी वहाँ रहता तो ये मैच आरसीबी जो है आसानी से जीत जाती। प्रेशर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, जब 2-3 विकेटें गिरी हैं तब ये मैच हारे।
वहीं इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच चेस्टरली स्ट्रीट में दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां कल खेल के तीसरे दिन स्टंप के समय श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 309 रन बनाए थे। कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने 80 रन बनाए। श्रीलंका को पारी की हार से बचने के लिए अभी भी 88 रनों की जरूरत है और उसके 5 विकेट बाकी हैं। इससे पहले कल इंग्लैंड ने श्रीलंका की पहली पारी को केवल 101 रन पर समेटा और उसे फॉलो ऑन के लिए मजबूर किया। उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 498 रनों के विशाल स्कोर पर समाप्त घोषित की थी। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 397 रनों की विशाल बढ़त मिली। और अब बात टेनिस की। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में रोला गैरा की लाल बजरी पर महिला एकल वर्ग में चौथे दौर में कल चौथी वरीयता हासिल स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा ने 13वीं वरीयता हासिल रूस की स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा को 6-3 6-4 से आसानी से मात दी। पुरुष एकल वर्ग में गैर वरीयता हासिल स्पेन के अल्बर्ट रामोस विनोलास ने 8वीं वरीयता हासिल कनाडा के मिलोस रोनिक को 6-2 6-4 6-4 से हराकर बाहर किया। लेकिन महिला युगल वर्ग में कल सबसे बड़ा उलटफेर तब हो गया जब शीर्ष वरीयता के साथ खेल रही भारत की सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस तीसरे ही दौर में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनिजाकोवा के हाथों 6-3 6-2 से हार गई। वैसे पुरुष एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे और तीसरी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका अपने अपने मुकाबले जीतने में कामयाब रहे। और अब बात एथलेटिक्स की। भारत की सीमा पूनिया ने अमेरिका में पैट यंग्स थ्रोअर्स क्लासिक चैंपियनशिप में 62.62 मीटर की दूरी तक डिस्कस थ्रो करते हुए न सिर्फ स्वर्ण पदक अपने नाम किया बल्कि रियो ओलंपिक का टिकट भी हासिल कर लिया। सीमा पूनिया इससे पहले साल 2004 और 2008 के ओलंपिक्स में भी हिस्सा ले चुकी है, लेकिन तब वो क्लासिफिकेशन राउंड से आगे नहीं बढ़ सकी थी। और अब बात बैडमिंटन की। पिछले दिनों उबेर कप में कांस्य पदक जीतने के बाद अब भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी आज से शुरू होने जा रहे इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना दमखम दिखाएंगी। वैसे भारत की स्टार महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल को 8वीं वरीयता दी गई है और कल पहले दौर में उनका सामना चीन ताइपे की पेयू पो से होगा। उनके अलावा पीवी सिंधु भी अपनी चुनौती पेश करेंगी तो अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा पर महिला युगल वर्ग मुकाबलों का दारोमदार रहेगा। पहले दौर में उनका सामना इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। पुरुष एकल वर्ग में भारत के श्रीकांत पी कश्यप और अजय जयराम के अलावा आर एम वी गुरुसाई दत्त अपना दावा पेश करेंगे। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और इस कार्यक्रम के बाद अब हम खबरें सुनने का वक्त हो चला है, सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अफ्रीकी मूल के कुछ लोगों पर हुए हमलों को नस्लीय मानने से इनकार कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये घटनाएं राजधानी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वक्त पर हुईं और मामूली झगड़े से ज़्यादा कुछ नहीं है। वेनेजुएला में एक अज्ञात बंदूकधारी ने 11 लोगों की हत्या कर दी है। मारे गए सभी 11 लोग पुरुष थे। हत्या के पीछे का मकसद अभी साफ नहीं हो पाया है। ईरान अपने नागरिकों को इस साल हज के लिए सऊदी अरब में मक्का नहीं भेजेगा। ईरान के संस्कृति मंत्री ने कहा कि सऊदी सऊदी अरब जानबूझकर ऐसी दिक्कतें पेश कर रहा है जिससे ईरानी नागरिक हज की यात्रा न कर पाएं। सऊदी अरब ने इन आरोपों से इनकार किया है। मेक्सिको के जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी एलिन पुलिदो को देश की उत्तरी सीमा से अगवा कर लिया गया है। उनके अपहरण की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। सीरिया में मुख्य विपक्षी गुट के शांति वार्ताकार मोहम्मद अलाउस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। विश्व भारती कार्यक्रम लेकर हम फिर से हाजिर होने वाले हैं। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।